जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन
थोड़ा माता जी को बोलिए शांत रहे, आपका आवाज यहाँ तक आ रहा है, बिना माइक के यहाँ तक आवाज आ रहा है।
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शला चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं दाति स्वपदांतिकं। वंदे श्री गुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाभारत की कथा को जारी रखेंगे। हम लोग अभी तक सुन चुके हैं कि कैसे महाभारत की रचना हुई, कितने श्लोक हुए, और फिर कैसे अलग अलग लोकों में अलग अलग लोगों ने इन श्लोकों को गाया, भगवान का गुणगान किया, और फिर कैसे जन्मजय ने एक यज्ञ किया जिसमें सारे सर्पों का नाश वो करना चाहते थे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। और फिर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन फिर एक ऋषि के आ जाने से उनके हस्तक्षेप के कारण फिर ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ और सारे जो बचे हुए सर्प थे उनकी जान बच गई। और फिर उस समय वैशंपायन मुनि ने महाभारत कहना प्रारंभ किया। महाभारत ये एक इतिहास है, एक वंश का, या कहना चाहिए कि ये कथा है पांच भाइयों की, या अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो ये कथा है भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण का गुणगान। तो ऐसे कथाओं में जब हम लोग अपने आप को लगाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि भौतिक जगत की जो वासनाएं हैं, जो दूषण है, जो कलमश है हमारे हृदय में, वो इन कथाओं को सुनने से दूर हो जाता है। हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे सत्यवती का जन्म हुआ, शांतनु महाराज के जन्म की कथा भी हम लोगों ने सुनी। आप लोगों को याद है शांतनु महाराज कौन है, अपने पूर्व जन्म में कौन थे? राजा महाभीष। वैसे श्रीपद मध्वाचार्य महाभारत की अपनी टीका में लिखते हैं कि ये जो महाभीष थे ये और कोई नहीं स्वयं वरुण देव थे, अर्थात महाभीष का जन्म लेने से पहले वे वरुण देव थे, और वरुण देव की पत्नी हैं गंगा देवी। तो वही वरुण देव महाराज शांतनु के रूप में आए और वही गंगा देवी उनकी पत्नी बनी। ऐसा वर्णन श्रीपाद मध्वाचार्य करते हैं कि वरुण देव को भी ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था जिसके कारण वो महाभीष बने राजा। और फिर एक बार फिर से श्राप हुआ जैसा हम लोगों ने चर्चा की थी, तो फिर वो महाभीष राजा वो आगे चलकर शांतनु बने, महाराज प्रतीप के पुत्र। हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे महाराज प्रतीप तपस्या कर रहे थे, तो आगे चलकर उनके तीन पुत्र हुए थे। शांतनु सबसे छोटे थे, सबसे बड़े नहीं थे, फिर भी राज्य उनको दिया गया। महाराज प्रतीप के सबसे बड़े पुत्र थे देवापी। भागवत में भी वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं और अन्य आचार्यों ने, श्रीपद मध्वाचार्य इत्यादि ने समझाया है कि ये देवापी आज भी कलाप ग्राम में रह रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं सतयुग के प्रारंभ होने का, क्योंकि जब सतयुग प्रारंभ होगा तो वंश परंपराएं प्रारंभ होंगी और उन वंश परंपराओं को प्रारंभ करने में सहयोग देंगे देवापी, जो कि महाराज प्रतीप के पुत्र हैं, महाराज शांतनु के भाई हैं। तो वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जब सतयुग प्रारंभ होगा, जब कली आएंगे, कली के अंत में जब कल्कि अवतार आएंगे, तो फिर कल्कि अवतार सारे दुष्टों का नाश करेंगे अपनी तलवार से और थोड़े से भक्तों के साथ नए युग का प्रारंभ करेंगे, और नए युग का प्रारंभ होने में जो वंश परंपराएं प्रारंभ होंगी वो देवापी से प्रारंभ होंगी। ऐसा वर्णन आचार्यों ने, स्वयं प्रभुपाद ने भी किया है। तो ये उनके पहले पुत्र थे महाराज प्रतीप के, और दूसरे पुत्र थे बाहलीक, जो एक अन्य प्रदेश के राजा बने। लेकिन इन तीनों में सबसे गुणवान थे शांतनु, और इसीलिए उनको राजा बनाया गया। फिर हम लोगों ने यह भी सुना कि कैसे शांतनु का विवाह हुआ गंगा देवी से, जो कि पहले से ही निश्चित था, और फिर भीष्म देव का जन्म, इसके बारे में भी चर्चा की। वैसे भीष्म देव के जन्म के विषय में बताया जाता है, वैसे महाभारत से हम लोग एक बात सीखते हैं कि सब कुछ पहले से भगवान की योजना से होता है। अब भीष्म देव इतने सारे लोगों में केवल उन्हें ही क्यों इतना लंबा जीवन जीना पड़ा, केवल वही क्यों ब्रह्मचारी रहे, केवल उन्हें ही क्यों बाणों की शैया पर सोना पड़ा, तो ये इसका भी कारण है। मध्वाचार्य अपने टीका में लिखते हैं इसका कारण कि जब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें श्राप दिया था, जैसे हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, तो वशिष्ठ मुनि ने जब सातों आठों भाइयों को श्राप दिया था और फिर सात भाई उसमें से उन्होंने कहा कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये मनुष्य जीवन बड़ा शापित है, तो फिर उन सातों को जितना जीवन यहां जीना था वो सारी उम्र, वो सारे वर्ष अकेले द्यू अर्थात आठवें वसु भीष्म को जीने पड़े, तो इसीलिए उनका जीवन इतना लंबा हुआ और उनको कष्ट भी हुए। आगे चलकर हम लोग ये भी वर्णन करेंगे कि अंबा कौन है और क्यों उनको उनसे द्वेष हुआ, उनका भी इतिहास है, तो वो जब उस समय आएगा तब हम लोग वो भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह शांतनु महाराज और गंगा देवी से भीष्म हुए, और भीष्म ने फिर आगे चलकर महाराज शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाया। उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली बार की, और फिर सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हो गया। महाराज शांतनु से सत्यवती के गर्भ में दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का विचित्र वीर्य। दोनों ही बड़े सुंदर बालक थे, लेकिन अभी बड़े भी नहीं हुए थे कि शांतनु महाराज ने अपना देह त्याग दिया, और उस समय भीष्म उनको राज्य बाहर संभालना पड़ा। हालांकि राजा उन्होंने चित्रांगद को बनाया, लेकिन फिर भी वो राजकाज वही देखते थे क्योंकि दोनों अभी छोटे थे। जब चित्रांगद बड़े हुए तो सारे लोकों में, तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल गई, क्योंकि बड़े ही प्रतापी थे। कोई ही ऐसा राजा रहा होगा जो चित्रांगद के सामने टिक पाए, और केवल पृथ्वी लोक पर नहीं देवलोकों में भी उनकी ख्याति फैल गई। और जब देवलोकों में ख्याति फैली तो गंधर्वों के राजा जिनका नाम भी चित्रांगद था उनको द्वेष हो गया। वो सोचने लगे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अर्थात एक ब्रह्मांड में दो चित्रांगद नहीं रह सकते, और उन्होंने इस चित्रांगद को पृथ्वी पर आकर युद्ध के लिए ललकारा। देखिए व्यक्ति को अपने नाम से कितनी आसक्ति रहती है कि मेरे नाम वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा आसक्ति व्यक्ति को नाम से होती है, कभी कभी इसका सदुपयोग भी हो जाता है और कभी कभी दुरुपयोग। ऐसा बताया गया चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण भक्त जो होते हैं वो बड़े चतुर होते हैं, वो हर गलत चीज का भी सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं नाम की, तो एक प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है श्रील प्रभुपाद के जीवन का, जो इसी विषय पर है कि कैसे लोगों को नाम से आसक्ति होती है। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूरी करने के लिए पाश्चात्य देशों में प्रचार के लिए जाना चाहते थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, कहीं से भी उनका कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी कि कैसे वो जा सकें पाश्चात्य देशों में। पहले तो कोई जान पहचान नहीं, और फिर अगर जान पहचान हो भी जाए तो जाने के लिए कोई साधन नहीं। तो श्रील प्रभुपाद एक महिला जिनका नाम था सुमति मोरार जी, उनसे बहुत याचना कर रहे थे, उनसे प्रयास कर रहे थे मिलने का, कि किसी तरह उनसे मिलकर वो पाश्चात्य देश अमेरिका जाने का अपना व्यवस्था कर लें, प्रबंध कराएं। लेकिन उनके सेक्रेटरी थे नागराजन, तो वो नागराजन वो उनको मिलने नहीं देते थे। वैसे उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी की थी श्रील प्रभुपाद के लिए, क्योंकि सुमति मुरार जी जानती थी कि स्वामी जी आते रहते हैं मिलने के लिए। उन्होंने अपने सचिव से कहा था कि इनकी इनको जो चाहिए उनकी व्यवस्था कर देना। तो स्वामी जी के लिए जब भी आते थोड़ा बहुत प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था नागराजन करते, लेकिन श्रील प्रभुपाद एक ही बात उनसे कहते कि मुझे उनसे मिलना है। तो उनके सचिव दिखलाते कि देखिए इतनी सारी फाइलें हैं, इतना सारा काम है, कंपनी डूबने वाली है, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, तो इसलिए उनसे आप नहीं मिल सकते। आपको क्या चाहिए? उन्होंने मुझे कहा है कि आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे दूं, आप बताइए। श्रील प्रभुपाद ने कहा जो मुझे चाहिए वो आप दे देंगे? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप बात मान जाइए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा अच्छा ठीक है, तुम उनको जाकर ये कहो कि आपका नाम शास्त्रों में लिखा है। तो एकदम हैरान हो गया उनका सचिव, ये जाके कहूं? कहा हाँ जाकर कहो, सुमति मुरार जी से कहो कि आपका नाम शास्त्रों में लिखा है, बस इतना ही। हाँ बस इतना ही। तो वो जाने लगे, प्रभुपाद ने फिर से उन्हें बुलाया, इधर आओ, उनको जाकर कहना कि शास्त्र में वर्णन है कि घर घर में मेरे नाम का प्रचार होगा, घोरे घोरे मेरा नाम हर घर में जाएगा, और तार साक्षी सुमति तार साक्षी, और उसमें लिखा है कि सुमति साक्षी होगी, तो ये जाके कह दो। तो सचिव चले गए और उन्होंने कहा कि मैडम स्वामी जी कह रहे हैं कि आपका नाम शास्त्रों में लिखा है। उनका मेरा नाम शास्त्रों में लिखा है? हाँ आपका नाम शास्त्रों में लिखा है। वो वैसे कुछ काम कर रही थी, रुक गई, और जब सचिव ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है उनको अंदर बुलाओ। तो तुरंत अंदर बुलाया, श्रील प्रभुपाद आए बैठे, सुमति जी ने पूछा कैसे हैं, स्वामी जी ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा मेरा सचिव कह रहा था कि आप कुछ उससे कह रहे थे कि मेरा नाम शास्त्रों में, हाँ आपका नाम शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि घर घर में मेरे नाम का प्रसार होगा और उसकी साक्षी सुमति होगी। श्रील प्रभुपाद ने श्लोक भी बताया तो उनको बड़ा आनंद आया। दरअसल सुमति अर्थात जिसकी मति अच्छी है अर्थात बुद्धिमान, सुमेधसा, भागवत में भी वर्णन है सुमेधसा, जो लोग बुद्धिमान हैं वो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकारेंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो इसलिए सुमति, उसकी साक्षी सुमति हैं, तो बड़ी प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद से पूछा आपकी क्या इच्छा है? श्रील प्रभुपाद ने कहा मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। तो उस समय उन्होंने कहा, दोनों उस समय इंग्लिश में बात कर रहे थे, और सुमति मुरारजी ने कहा स्वामी जी यू आर वेरी ओल्ड एंड अमेरिका इज कोल्ड। स्वामी जी आप बहुत बूढ़े हैं और अमेरिका में बहुत ठंड है। तो श्रील प्रभुपाद बैठे थे और वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा सुमति जी आई एम बोल्ड, मैं बहुत मेरे अंदर बहुत शक्ति है, आप चिंता मत कीजिए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने भी इस नाम के गुण को भक्ति में लगवाया। अगर वो शायद कहते नहीं कि आपका नाम शास्त्रों में है तो शायद अंदर नहीं बुलाते हैं। तो इस प्रकार लोगों को नाम का बहुत महत्व रहता है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक नाम में क्या रखा है। एक बहुत बड़े नाटककार हुए हैं जिन्होंने कई नाटक लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर, और वो कहते हैं कि व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या है। तो हमने जब पहली बार सुना था भक्ति में आने के बाद हमने सोचा नहीं सब कुछ तो नाम में ही है, हमारी तो फिलॉसफी ही यही है, लेकिन एक दृष्टि से वो सही कह रहे थे, भौतिक नाम में क्या है, व्हाट्स देयर इन द नेम। लेकिन फिर भी लोग अपने नाम के लिए बड़े आसक्त रहते हैं, जीवन भर अपना नाम और मरने के बाद भी मेरा नाम बना रहे इसलिए मेरा वंश, नहीं तो लोग कहते हैं मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अरे आप मर जाओगे, आप कहीं किसी योनि में जाओगे, कहां जाओगे पता नहीं कर्म के अनुसार, लेकिन मेरा नाम लेने वाला यहां बना रहे, ये आसक्ति है लोगों की। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि अगर नाम लेना है तो भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस हरे कृष्ण महामंत्र का एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य अपने ग्रंथ भजन रहस्य में समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है दरअसल इसका संबंध चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक से है। जो 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने दिए वो दरअसल ये 8 श्लोक इस सारे महामंत्र में हैं, 8 श्लोकों का सार। ये 16 अक्षरों वाला जो महामंत्र है इसमें भक्ति विनोद ठाकुर इसको 8 भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात दो दो अक्षरों को लेते हैं, शब्दों को लेते हैं, जैसे हरे कृष्णा ये एक, फिर हरे कृष्णा ये दूसरा, ऐसे 8 वर्ण वो बनाते हैं और कहते हैं कि ये एक एक शब्द या एक एक वर्ग ये शिक्षाष्टक के एक एक श्लोक से संबंधित है और उसका बड़ा सुंदर व्याख्यान वो करते हैं अपने उस ग्रंथ में। वो कहते हैं कि पहला हरे कृष्णा जब हम कहते हैं तो ये अविद्या को समाप्त करता है, जितनी भी हमारा अज्ञान है उसको समाप्त करता है। इसीलिए उस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विद्या वधु जीवनम, विद्या क्या है और अविद्या क्या है इसको जानना चाहिए। कृष्ण को जानना ये विद्या है और कृष्ण से विमुख होना, कृष्ण को भूल जाना ये अविद्या है। बहुत सरल है विद्या और अविद्या की परिभाषा। जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी तथाकथित ज्ञान अगर हम लोग लेते हैं तो वो अविद्या है, वो विद्या नहीं है। लेकिन कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु जो भगवान से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है, वो विद्या है। तो इसीलिए पहला हरे कृष्णा ये विद्या को प्रकट कराता है, अविद्या का नाश करता है। दूसरा, पहले हम हरे कृष्णा कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर आगे समझाते हैं। दूसरा, ये भगवान की शक्तियों को प्रकट करता है। अर्थात अगर हम इसको ठीक से समझें तो ये एक एक स्तर है जिसमें हम ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको सुनने का प्रयास कीजिए। हो सकता है थोड़ा कथा नहीं है, महाभारत नहीं है, लेकिन सार है महाभारत का। तो ये एक एक स्तर है। पहला स्तर, जब हम पहले ही हरे कृष्णा कहते हैं तो हमारी सारी अविद्या का नाश हो जाता है, अगर हम बड़ी श्रद्धा से इस नाम को लेते हैं। श्रद्धा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए नित्यानंद प्रभु मूल्य चाहते हैं श्रद्धा का। श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन। तो जब पहले ही श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से नाम लिया जाता है तो सारी अविद्या का नाश कर देता है। फिर दूसरा स्तर, जहां भगवान की शक्तियां हमारे सामने प्रकट होती हैं, भगवान की शक्तियों को हम जान पाते हैं, भगवान कौन है, ये जब श्रद्धा से नाम लेते हैं तब हम उस स्तर तक पहुंच पाते हैं। तो भगवान की शक्तियों को ये दूसरा स्तर प्रकट करता है, या दूसरे स्तर पर हम लोग भगवान की शक्तियों को जानते हैं। तीसरे स्तर पर हम अपनी साधना के जो गुण है उसको और ऊपर बढ़ाते हैं। आप इन सब को सुनते हुए शिक्षाष्टक के श्लोकों का भी स्मरण करते जाइए तो फिर अपने आप ये अवस्थाएं आपको पता चलती जाएंगी। तो तीसरे स्तर में जब ये तीसरा नाम लिया जाता है कृष्ण कृष्ण, तो उस समय ये बताते हैं कि हमारी जो साधना है उसके गुण को हम और अच्छा करते हैं इस स्तर पर। और फिर चौथे स्तर पर हमें भगवान के नाम में रुचि आती है। ये रुचि भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है, हम बड़े संक्षेप में इसको समझा रहे हैं। रुचि को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। वो कहते हैं कि हमारी रुचि दो तरह की हो सकती है। एक रुचि उदाहरण देते हैं कि जैसे हम लोग भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं, यहाँ पर आते हैं राधा गोकुलानंद जी के दर्शन करते हैं, तो गोकुलानंद जी के दर्शन करते समय अगर विग्रह का श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है, आसपास की डेकोरेशन बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत सुंदर पहने हैं भगवान ने, तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। आज ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो क्या हर रोज सुंदर नहीं है? तो ये एक तरह की रुचि है, जिसको ये भी रुचि है क्योंकि भगवान को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये एक तरह की रुचि है, जहां हम भगवान को जब देखते हैं तो उनके, उनसे संबंधित चीजों से उनके गुणगान, उनका गुणगान करते हैं। दूसरी तरह की रुचि वो समझाते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की। वो जब जगन्नाथ जी को देखते थे तो वो जगन्नाथ जी को नहीं देखते थे, बड़ी बड़ी आंखें नहीं देखते थे, उनके हाथ ऐसे अंदर गए हुए नहीं देखते थे, वो देखते थे श्याम सुंदर को। ये रुचि है कि जब हम राधा गोकुलानंद जी को देखें तो केवल अगर बहुत सुंदर वस्त्र है, बहुत अच्छी ड्रेसिंग हुई है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, तब वो अच्छे लग रहे हैं। ये एक प्रकार की रुचि है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ड्रेसिंग अच्छी नहीं करनी चाहिए, डेकोरेशन नहीं करनी चाहिए, कि अरे भगवान तो वैसे ही सुंदर हैं, वो तो हैं, लेकिन हमारी दृष्टि अभी चैतन्य महाप्रभु की नहीं है कि हम जगन्नाथ जी को देखते हुए अभी हम उसमें श्याम सुंदर उनको नहीं देखते हैं रूप को। तो इसलिए और एक सुंदर उदाहरण वो देते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने एक समय, एक देवदासी थी जो जंगल में गीत गोविंद गा रही थी, श्रित कमला कुछ मन्नल हे, उसमें से ही गा रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने सुना, एक सन्यासी, एक स्त्री का भाषण या स्त्री का भजन सुनना उनके लिए तो वर्जित है, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना गीत गोविंद, भगवान का गुणगान, श्रित कमला कुछ, वो भाग पड़े उस ओर जहां से वो आवाज आ रही थी। ये रुचि है, उन्होंने उसमें भी श्याम सुंदर को देखा। नाम नाम कारी बहुदा निज सर्वशक्ति, सब कुछ भगवान का भगवान के नाम में है, स्वयं भगवान है, भगवान नाम में नहीं आए हैं, नाम ही भगवान है, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने भी समझाया। तो ऐसी रुचि हमारे अंदर उत्पन्न होती है, ये हमारा चौथा स्टेज है। पांचवें स्तर पर स्मरण तीव्र हो जाता है। जब हम लोग हरे राम कहते हैं, स्मरण तीव्र होता है। हमारा स्मरण ये बहुत आवश्यक है। इन चीजों को अगर हम जप के समय स्मरण करें, जैसे हम स्मरण की बात कर रहे हैं, तो अगर इन चीजों को हम जप के समय स्मरण करें तो फिर आप सोचिए आपका जप कितना अच्छा हो जाएगा। इन आठों चीजों को सुनने के बाद अगले दिन कल जप करते समय इनका स्मरण कीजिए। तो पांचवें स्तर पर स्मरण तीव्र होता है। छठे स्तर पर भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते हैं कि हमारी जितनी भी भौतिक इच्छाएं रुचि अभी तक बनी हुई थी वो सब समाप्त हो जाती हैं और फिर कृष्ण के प्रति रुचि बड़ी गाढ़ी हो जाती है। सातवां स्तर जहां केवल राम राम है, इसको वो बतलाते हैं ये विप्रलंब भाव है, हरे नहीं है इसमें, राम राम है। तो ये विप्रलंब भाव, जैसे ढूंढना, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, ढूंढना, विप्रलंब भाव। तो ये सातवां स्तर है। और फिर आठवां स्तर ये शुद्ध सत्व का स्तर है, जो कि गोपी भाव, शुद्ध ब्रज का भाव, गोपियों का भाव है, अर्थात सर्वोच्च अवस्था। तो ये पूरे महामंत्र का रहस्य वो समझाते हैं। हाँ, इसमें एक एक चीज को बड़े विस्तार से उन्होंने समझाया है। कभी और महामंत्र पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इस पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से नाम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि अगर नाम ही लेना है, अगर नाम की ही चिंता है, तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण के भक्तों का नाम लेना चाहिए, कृष्ण से संबंधित उनके सभी चीजों का नाम लेना चाहिए, कृष्ण के धाम का नाम लेना चाहिए, वो भी आराध्य है। इसीलिए चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि जिस तरह स्वयं कृष्ण आराध्य हैं, आराध्य ब्रजेश तनयस, उसी तरह तद धाम वृंदावनम, उनका धाम वृंदावन भी आराध्य है। तो ऐसे नाम हमें लेने चाहिए। लेकिन यहां पर चित्रांगद ये बड़े दुखी हो गए कि मेरे नाम वाला व्यक्ति कैसे इस जगत में है। तो फिर युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, और ये युद्ध बताया जाता है 3 वर्षों तक चला, बहुत भयंकर युद्ध, घमासान युद्ध, कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं था। और फिर 3 वर्ष के अंत में पृथ्वी के चित्रांगद की हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई और वो युद्ध में मारे गए। भीष्म देव को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह कर फिर उनका अंतिम संस्कार किया। और अब फिर विचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। छोटे थे, राज्य भीष्म करने लगे, फिर धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो फिर भीष्म को चिंता हुई कि अब मुझे इनका विवाह करना चाहिए। और फिर उन्हें ऐसा पता चला कि काशीराज की 3 कन्याएं हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, और इन तीनों राजकुमारियों का एक साथ स्वयंवर हो रहा है। विवाह करने के पहले समय में क्षत्रियों की कई प्रथाएं थीं, जिनमें से एक स्वयंवर होता था। स्वयंवर अर्थात बहुत सारे राजा आते थे, फिर उनके नाम पुकारे जाते थे, यहां पर राजकुमारियां वो उन नामों को सुनती थीं, उनके गुणगान को सुनती थीं और फिर उनमें से एक को स्वयंवर अपने आप चुन लेती थीं सबके सामने, और फिर उनका विवाह होता था। हाँ, या तो विवाह होता था या फिर युद्ध होता था। अगर वो किसी एक को चुन लेती थी तो बाकी सारे अपनी तलवार निकालकर युद्ध करने के लिए आ जाया करते थे, और फिर उसे एक राजा को उन सबको हराना होता था। अगर हरा सकता तो फिर विवाह कर ले। देखिए पहले विवाह करना भी कितना कठिन था, जान पर खेलकर विवाह करना होता था, युद्ध करना, तलवारें चलना। तो फिर स्वयंवर हो रहा है, काशीराज की कन्याओं का भीष्म भी वहां पर गए। दरअसल भीष्म को देखकर तो सब लोग हैरान हो गए कि अरे ये तो ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, क्या हुआ काशीराज की कन्याओं का सौंदर्य देखकर लगता है अपने व्रत को तोड़ दिया है भीष्म ने। ऐसी सारी बातें वहां पर वे लोग करने लगे। तो फिर ऐसे में भीष्म ने जब सुना कि कई राजाओं के नामों को पुकारा जाने लगा, एक राजा का नाम फिर उनका गुणगान, ताकि राजकुमारियां अपने अपने वर को चुने, तो भीष्म से रहा नहीं गया और भीष्म ने तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। और उस समय उन्होंने वहां उपस्थित सारे राजाओं से कहा कि मैं इन तीन कन्याओं को विचित्र वीर्य की पत्नी बनाने के लिए ले जा रहा हूं, अगर तुम लोगों में से किसी में भी शक्ति है तो आप लोग मुझे रोक लीजिए। और फिर सबकी तलवारें निकल गईं, युद्ध हुआ। बताते हैं बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, सारे राजाओं ने सब ने मिलकर एक साथ अकेले भीष्म पर आक्रमण किया, सब तरफ से तीर चलने लगे और भीष्म ने अकेले सबको परास्त कर दिया। और फिर भीष्म इन तीनों को लेकर हस्तिनापुर चले आए और फिर यहां पर आकर वो चाहते थे कि तीनों का विवाह विचित्र वीर से हो जाए, लेकिन अम्बा वो गई भीष्म के पास और उन्होंने कहा कि मैंने मन में पहले ही शाल्व नरेश को अपना पति स्वीकार किया है, अब आप जो उचित समझें वो कीजिए। तो फिर भीष्म ने ब्राह्मणों से सलाह की और अम्बा से कहा कि ठीक है बाप वापस जा सकते हैं, उनको बड़े आदर सम्मान के साथ वापस भेज दिया। दरअसल ये अम्बा कौन थी और ये भीष्म से इन्होंने द्वेष क्यों किया, आगे चलकर भी हम देखते हैं कि यही अम्बा शिखंडी के रूप में आई और वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो क्या इतिहास था, अम्बा ही क्यों भीष्म के इतने विरोध में हुई। आगे चलकर और भी अम्बा ने बड़ा विरोध किया, विवाह करना चाहती थी भीष्म से, परशुराम जी से युद्ध हुआ भीष्म का इसी कारण से। तो मध्वाचार्य जी इस बात को समझाते हैं, वो कहते हैं कि जिस समय आठ वसुओं ने वशिष्ठ मुनि का अपमान किया था और द्यू जो आठवें वसु थे जो भीष्म बने, उनकी पत्नी थी वरांगी, और उनकी पत्नी ने उनसे ये कहा था कि आप ये जो नंदिनी गाय है वो आप चुरा लीजिए, ले चलिए, मैं अपनी जो मित्र है पृथ्वी पर रहती है उसको ये देना चाहती हूँ ताकि उसकी उम्र बढ़ जाए, 10,000 साल तक वो आनंद ले। तो उस समय जब वशिष्ठ मुनि को ये पता चला था कि द्यू और उसकी पत्नी ने ये सारा कार्य किया है, तो द्यू को तो उन्होंने श्राप दिया ही, पत्नी को भी श्राप दिया था कि तुम्हें भी मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और सदैव पति और पत्नी में झगड़ा होता रहेगा नीचे जाकर। तो ये जो अम्बा थी ये दरअसल द्यू अर्थात भीष्म की पत्नी थी पूर्व जन्म की वसु की, जिनके कारण उन्होंने नंदिनी को चुराया था, और वशिष्ठ मुनि के श्राप के कारण यहां पर आकर उनमें हमेशा द्वेष बना रहा। और अम्बा ने बड़ी तपस्या की, भीष्म का अपमान किया, भीष्म से उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि वो विवाह करें, लेकिन भीष्म ने स्वीकार नहीं किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जाकर बड़ी घोर तपस्या की तो परशुराम जी ने एक बार देखा और परशुराम जी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो यहां पर, क्यों तपस्या कर रही है। उन्होंने बतलाया कि भीष्म ने मेरा अपमान किया है। परशुराम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भीष्म को कह दूंगा, वो मेरा शिष्य है और वो मान जाएगा, तुमसे विवाह कर लेगा, अब गुरु की इतनी बात तो उसको माननी चाहिए। तो फिर परशुराम जी आए भीष्म के पास, भीष्म ने बड़ा स्वागत किया। परशुराम जी ने कहा कि भीष्म मेरी इच्छा है तुम अम्बा से विवाह कर लो। तो भीष्म ने कहा कि नहीं, मैंने तो प्रण लिया है, व्रत लिया है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुमसे कह रहा हूं विवाह कर लो। उन्होंने कहा नहीं, शास्त्र के अनुसार ये एक आज्ञा गुरु की ठुकराई जा सकती है। तो क्रोध आ गया परशुराम जी को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम इसको स्वीकार नहीं करते हो तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। धमकी दी उन्होंने कि या तो स्वीकार करो नहीं तो युद्ध करो। उन्होंने सोचा कि शायद भीष्म घबरा जाएंगे कि परशुराम जी से कैसे युद्ध कर सकता हूं, तो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भीष्म ने कहा मुझे युद्ध करना स्वीकार है, युद्ध में मरना स्वीकार है, लेकिन विवाह नहीं करूंगा, अर्थात अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा, विवाह के लिए नहीं, प्रण नहीं तोड़ूंगा। तो फिर बहुत युद्ध हुआ, कई दिनों तक परशुराम जी और भीष्म का कोई भी नहीं हार रहे थे। अंत में देवताओं को आना पड़ा और रोकना पड़ा वो युद्ध। और वो दिन था जब परशुराम जी ने ये प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद किसी क्षत्रिय को मैं सिखाऊंगा नहीं, अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये सब क्षत्रिय मेरी बात नहीं सुनते हैं, है ना। पहले मारा क्षत्रियों को, 21 बार खत्म किया, और फिर अब इसको सिखाया, इतना सिखाने के बाद भी मेरी बात नहीं सुनता है, तो आज से मैं प्रण लेता हूं कि मैं कभी भी किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा। यही कारण था कि आगे चलकर जब कर्ण उनके पास गए थे तो कर्ण ने कहा नहीं कि वो क्षत्रिय हैं, और उन्होंने सीख लिया, लेकिन बाद में जब उनको पता चला तो उनको श्राप मिला। तो इस तरह से दोनों का विवाह, अंबिका और अंबालिका का विवाह हो गया विचित्र वीर्य से, और विचित्र वीर्य बड़ा कामासक्त हो गया, अपनी दोनों पत्नियों के साथ केवल भोग में लग गया, और उस कारण से उसको एक रोग हो गया और 7 ही वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई, विवाह के 7 वर्ष में, और कोई संतान नहीं हुई थी उसकी। तो देखिए यहां पर एक बड़ी विचित्र बात हम लोग देखते हैं कि जब सत्यवती का विवाह होना था तो उसके पिता ने शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजा बनना चाहिए। उसके लिए भीष्म ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, राज्य त्याग दिया, कितने बड़े बड़े कार्य हुए, लेकिन अंत में क्या मिला? दोनों पुत्र मर गए। सत्यवती के जो दोनों पुत्र हुए वो तो राजा नहीं बन पाए। तो इसीलिए हम लोग जब ऐसी कामनाएं करते हैं, ऐसी भौतिक कामनाएं करते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि इनका पूरा होना या ना होने से हमें कोई लाभ नहीं है। कितनी सारी इच्छाएं हैं हमारे हृदय में। नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, वो कहते हैं, तुमी तो दयार सिंधु अधम जनार बंधु मोर प्रभु करो अभदान। वो कहते हैं कि आप तो दया के सागर हैं, कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, तुम ही तो दया सिंधु, आप तो दया के सागर हैं, अधम जनार बंधु, ऐसे अधम पतित लोगों के आप बंधु हैं, आप रक्षक हैं, और इसीलिए वो कहते हैं मोरे प्रभु कर अभदान, आप प्रभु मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालिए, मुझ पर कृपा कीजिए। और क्यों कीजिए? वो बताते हैं कि ये जो सागर है मोह का, माया का सागर, इसमें काम रूपी तिमिंगल मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां, और वो मुझे निगलने के लिए तैयार हैं, मेरी ओर आ रही हैं, मेरी रक्षा कीजिए हे प्रभु। और ऐसा वो बहुत वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जन्म से ही, जब से जन्म हुआ मैंने आपके प्रति अपराध किया, कितने सारे अपराध मैंने किए हैं, बहुत बड़ा पापी हूं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर आप मेरा उद्धार करेंगे तो आपका नाम सारे लोकों में फैल जाएगा, आपकी कृपा का गुणगान सब लोग करेंगे कि मेरे जैसे पापी का अगर आप उद्धार कर सकते हैं तो किसी का भी कर सकते हैं। देखिए ये नरोत्तम दास ठाकुर का भाव है कि आप कृपया मेरा उद्धार इसलिए कीजिए कि आपकी कृपा, आपकी जो दया है, इसका गुणगान सारे जगत में हो जाए, कि ऐसे अधम पापी का भी उद्धार भगवान करते हैं। तो ऐसी बातें वो लिखते हैं, और फिर उसके लिए वो कहते हैं ये एक भजन में, फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि हमें कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्या करना चाहिए भगवान की कृपा के लिए। तो वो कहते हैं, अन कथा अन व्यथा नाही जन जत तथा। अन कथा, जो ये भौतिक कथाएं हैं, ये अनव्यथा भौतिक कष्ट हैं, केवल इनके बारे में सुनते नहीं रहना है। अगर हम केवल भौतिक चीजों के बारे में, भौतिक कथाओं में ही अपने आप को लगाए रहेंगे तो फिर हमारा लाभ नहीं होना है। आन कथा आन व्यथा, व्यथा अर्थात बहुत सारे दुख हैं इस भौतिक जगत में। अगर दिन भर हम वही चर्चा करते रहेंगे, साधारणता अगर देखा जाए, अगर हम लोग भक्ति मार्ग में नहीं हैं, तो बाहर के लोगों के लिए यही एक चर्चा है, किसको क्या दुख है, किसके घर में क्या हुआ, अपना दुख, दूसरों का दुख, यही कथा और यही व्यथा है सारे जगत की। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अगर हम केवल यही करते रहेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं है, जन्म जन्मों तक यही चलता रहेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कि भगवान के गुणगान में अपने आप को लगाना, जहां भी भगवान का गुणगान हो। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मेरे पांव में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जहां भी कृष्ण कथा हो रही हो अपने आप मेरे पांव वहां चले जाएं, मुझे सुनने में रुचि होनी चाहिए, मुझे आपके दर्शन में रुचि होनी चाहिए, और तब जाकर मेरे हृदय से ये जो वासनाएं हैं वो दूर होंगी। और ये सत्य है, हम सब के हृदय में ये वासनाएं हैं, ये कलमश है, लेकिन ये दूर होगा जब हम आन कथा आन व्यथा इनको त्यागेंगे। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि बहुत समय भक्ति में रहने पर भी ये हृदय से ये अहंकार, ये मल क्यों नहीं जाता है, क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, आन कथा आन व्यथा। हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी रुचि, हमारा आकर्षण आन कथा बाहर है, और जिस कारण से हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि क्यों हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। विषय छाड़ी या कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरा वो श्री वृंदावन। कब मैं देख पाऊंगा वो वृंदावन, जब हृदय में ये जो विषय वासनाएं हैं ये दूर होंगी। तो फिर इस तरह विचित्र वीर्य, इनका भी, इनकी भी मृत्यु हो गई, कोई वंश को आगे चलाने वाला नहीं। सत्यवती भीष्म के पास आई और भीष्म से वो कहने लगी कि आज मैं तुम्हें जो कहती हूं उसको स्वीकार करो, तुम राज्य संभालो, तुम राजा बनो, क्योंकि अब तुम ही हो इस वंश को चलाने वाले, और तुम अंबिका और अंबालिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। भीष्म ने कहा, और ऐसा केवल सत्यवती ने नहीं, बाकी लोगों ने भी कहा भीष्म से कि हाँ हाँ ये सही है, अभी ऐसा समय है, आपको स्वीकार करना चाहिए। तो भीष्म ने सत्यवती से कहा कि आप भूल गईं कि आपके पिता को मैंने वचन दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, और मैंने जो कहा है मैं सत्य पर अडिग हूं। और बहुत सुंदर वचन वो कहते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है पृथ्वी अपने गंध को त्याग दे, वायु अपने स्पर्श के गुण को त्याग दे, अग्नि अपने रूप के गुण को त्याग दे, मुझे तीनों लोकों का भी अगर राज्य मिले या ब्रह्मा का ही पद क्यों ना मिले, मैं सत्य बोलना नहीं त्यागूंगा, और तो और अगर कोई मुझे मोक्ष भी प्रदान करता है तो भी मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, अगर मुझे सत्य को त्यागना होगा तो। वो कहते हैं कि हो सकता है इंद्र अपने बल को खो बैठे, हो सकता है स्वयं धर्मराज एक समय झूठ बोल दें, लेकिन मैं सत्य को नहीं त्यागूंगा, मैंने जो कहा है वो सत्य है। तो ऐसी घोषणा उन्होंने की। देखिए कितना सुंदर शिक्षा हमें मिलती है। हम लोग अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस समय भीष्म को क्या मिल रहा था, एक बार पहले भी मिल रहा था और अब दोबारा सब लोग कह रहे थे भीष्म स्वीकार करो, दो सुंदर पत्नियां, इतना बड़ा राज्य, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सब कुछ जिसकी कामना इस जगत में रहते हुए एक व्यक्ति करता है। लेकिन भीष्म ने त्याग दिया। ये कैसे उनके हृदय में त्याग आया? हम लोग छोटे छोटे भोगों को नहीं त्याग पाते, छोटी छोटी सुविधाओं को नहीं त्याग पाते, लेकिन भीष्म ने सारे पृथ्वी का राज्य त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो शक्ति उनके अंदर आई सत्य को करने की, क्योंकि भगवान की भक्ति उनके हृदय में थी, और ऐसी शक्ति आचार्य समझाते हैं केवल भक्ति से आ सकती है, हमारे तप से, हमारे बल से, हमारे ब्रह्मचर्य से नहीं आती है। ये शक्ति आती है जब भगवान की भक्ति हृदय में हो। भीष्म को कितने कष्ट सहने पड़े जब वशिष्ठ मुनि ने उनको श्राप दिया था कि सातों भाइयों के जितनी भी उम्र है उतना तुम्हें रहना पड़ेगा। उनको रहना पड़ा उतने वर्ष इस जगत में, और फिर तुम्हें ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ेगा। तो उस वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया, वो उनके लिए वरदान हुआ, लेकिन श्राप मिला कि तुम्हें रहना पड़ेगा, और फिर और कष्ट सहने पड़ेंगे। जितना कष्ट एक व्यक्ति को मृत्यु के समय होता है वो बहुत है, लेकिन तुम्हें 8 व्यक्तियों की मृत्यु का कष्ट उस समय सहना पड़ेगा। इसीलिए बाणों की शैया पर सोओगे तुम। ये श्राप था वशिष्ठ मुनि का, और फिर हम देखते हैं कि आगे वैसा ही हुआ। भीष्म को बाणों की शैया पर सोना पड़ा। लेकिन अगर श्रीमद् भागवत में उस प्रसंग को हम लोग पढ़ें जहां भीष्म देव अपना देह त्याग कर रहे हैं, तो जानेंगे कि भीष्म को कोई कष्ट नहीं था। भीष्म बड़े प्रसन्न थे। जैसे ही कृष्ण को उन्होंने देखा तो वो कह रहे थे कि मैं जानता था कि तुम आओगे। और भीष्म उस समय का स्मरण करने लगे जब उनके शरीर में तीर लगने प्रारंभ हुए थे, या उससे पहले का भी वो स्मरण करते हैं, जब स्वयं कृष्ण ने चक्र उठा लिया, अपने ही वचन को तोड़ दिया भीष्म का मान रखने के लिए। भगवान अपने मान सम्मान की इच्छा भी नहीं रखते हैं। देखिए, अगर भक्त के लिए, भक्त का मान रखने के लिए उन्हें अपने वचन को तोड़ना पड़े, तोड़ देते हैं। भीष्म देव चाहते थे कि अगले दिन पांडवों का वध करूंगा 5 बाणों से। कृष्ण ने युक्ति करके वो बाण निकलवा लिए। भीष्म को पता चला ये सब कृष्ण की चाल है, प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मेरा वचन कृष्ण ने तोड़वाया है, मैंने वचन दिया था कि कल मैं पांडवों का वध करूंगा, अब हो नहीं सकता कृष्ण की वजह से, लेकिन मैं भी वचन लेता हूं कल मेरी वजह से कृष्ण अपना वचन तोड़ेंगे। कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने ऐसा घमासान युद्ध किया। कृष्ण बोल रहे थे अर्जुन को, अर्जुन तीर चलाओ, तीर चलाओ, और अर्जुन पूरी शक्ति से तीर चला रहे थे, लेकिन उस समय, उस दिन भीष्म को रोकने वाला कोई नहीं था, अर्जुन भी नहीं रोक पा रहे थे। आंधी तूफान, जहां से भीष्म चले जाते ऐसा लगता मानो आंधी आ गई है, सैनिकों के शव मिलते केवल, बस जोर से आंधी आती और जैसे ही वो हवा हटती वहां पर पूरे केवल शव। ये भीष्म का उस दिन का प्रताप था। अंतिम दिवस, 10वां दिन था युद्ध का। वो बहुत सुंदर वर्णन है 18 दिनों का। अभी जब हम लोग आएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या हुआ एक एक दिन, और क्या क्या मनोभाव थे लोगों के, क्या भीष्म का मनोभाव था, क्या तैयारी कृष्ण ने की। एक बड़ा सुंदर वर्णन है कि कृष्ण घोड़ों को तैयार कर रहे थे, रथ को तैयार कर रहे थे, तो जाकर जैसे घोड़ों को ऐसे मार कर सब देख रहे थे ठीक ठाक है कि नहीं, उनको सहला रहे थे सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि युद्ध के लिए जाना है, अभी तक अर्जुन आए नहीं थे, और कृष्ण सारथी हैं तो सारथी को पहले सब चेक करना चाहिए, जैसे ड्राइवर होता है मालिक के आने के पहले गाड़ी में सब पेट्रोल वगैरह, पानी वगैरह है कि नहीं, पहिए में हवा है कि नहीं, गाड़ी ठीक है, साफ सुथरी है, सब करके रेडी रहता है। जैसे ही मालिक आता है, दरवाजा खोलता है। ऐसे ही कृष्ण रथ तैयार कर रहे थे, घोड़ों को सहला रहे थे, देख रहे थे कि घोड़े एकदम ठीक हैं कि नहीं, तंदुरुस्त हैं कि नहीं, शक्तिशाली हैं कि नहीं, इतने दिन का युद्ध सहन कर पाएंगे या नहीं, ये सब देख रहे थे। और क्योंकि कृष्ण स्पर्श कर रहे थे तो घोड़ों को भी बड़ा आनंद आ रहा था। अब जिनके स्पर्श से गोवर्धन हवा में उछलने लगे थे, अब वो स्पर्श जब घोड़ों को होगा तो आप सोचिए कि क्या उनकी दशा हुई होगी। तो कृष्ण बड़े प्रेम से ऐसे कर रहे थे, पीछे से सहला रहे थे, और घोड़े कृष्ण को चाटना चाह रहे थे, प्रेम करना चाह रहे थे। जैसे गाय जब अपने बछड़े को प्रेम करती है तो चाटती है, तो घोड़ों की भी इच्छा हुई, तो घोड़ों ने मुंह घुमा लिया। और अब कृष्ण ने सोचा कि अगर अब घोड़े यहां पर इस समय ये करने लगे तो ठीक नहीं है, तो फिर उन्होंने ऐसे इशारा किया, अभी नहीं, बाद में। तो फिर घोड़ों ने मुंह घुमा लिया, ठीक है अभी बाद में करेंगे। तो ऐसे वर्णन बहुत सुंदर 18 दिनों का है। उसके बाद अर्जुन आए, और अर्जुन मालिक हैं उस समय के लिए, ये सारथी हैं। तो सारथी का कर्तव्य होता है कि रथ पर चढ़ने में मदद करे रथी की। तो फिर कृष्ण ने अपने दोनों हाथ ऐसे रख दिए कि आओ अर्जुन पांव रखो और ऊपर चढ़ जाओ। देखिए ये कृष्ण है, भक्त वत्सल, जो अपने भक्तों के प्रति बड़े वत्सल हैं। वत्स अर्थात छोटा बछड़ा। तो वो कृष्ण जो एक गाय की तरह भक्तों का रक्षण करते हैं, प्रेम करते हैं भक्तों से, एक वत्स की तरह, उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। और भक्त भी एक बछड़े की तरह केवल अपनी माँ की ओर ही भागते हैं। जब बहुत सारी गायें खड़ी हों और उसमें बछड़े को छोड़ दीजिए, बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास जाता है और कहीं नहीं जाता। इसी तरह भक्त हैं। आप उनको बहुत सारी चीजें दिखा दीजिए, अन्य देवता दिखला दीजिए, अन्य लोभ आकर्षण, लेकिन उनका मन सीधा कृष्ण की ओर जाता है। तो फिर ऐसे अर्जुन को उन्होंने कहा, तो आप सोचिए कि वो भगवान जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यही ब्रह्मांड नहीं असंख्य ब्रह्मांडों के, जिनसे सारे अवतार आते हैं, एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वो भगवान हाथ दे रहे हैं कि अर्जुन इस पर पांव रखो और ऊपर चढ़ जाओ। ये उनका प्रेम है, भक्त वत्सल, भगवान भक्त वत्सल, इसीलिए उनको भक्त वत्सल कहते हैं। तो फिर ऐसा युद्ध उस समय हुआ था। तो भीष्म ने जब बाणों की शैया पर भी वो स्मरण करने लगे कि जब आपने अपना वचन तोड़ा हे कृष्ण और आप आए भागे, तो आपके मस्तक पर थोड़ी सी धूल लग गई थी, लेकिन उस समय भी आप बहुत सुंदर लग रहे थे, वो धूल भी आभूषण लग रही थी आपके शरीर पर। भगवान के श्रृंगार और साधारण लोगों के श्रृंगार में एक अंतर है। भगवान का जब श्रृंगार होता है तो भगवान को जो पहनाया जाता है उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान को स्पर्श हुआ। साधारण लोगों का सौंदर्य वस्तु से होता है। कोई अच्छे कपड़े पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं, कोई बहुत सारे गहने पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो वस्तु से साधारण व्यक्ति का सौंदर्य होता है। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है। वस्तु का सौंदर्य कृष्ण के कारण होता है। कोई भी चीज आप कृष्ण पर, कृष्ण केवल मोर पंख लगा लेते हैं। अब मोर पंख क्या है? मोर के द्वारा फेंका हुआ पंख है। मोर कोई बड़े प्रेम से निकाल कर वो पंख नहीं देते हैं कि ले लीजिए साफ वाफ करके, गिरा हुआ पंख गिरा देते हैं मोर, नाचते नाचते पंख गिर जाता, उसको उठाकर अगर कृष्ण के लगा दिया जाए तो वो उसकी सौंदर्यता बढ़ जाती है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित है। तो इस तरह हमें देखना चाहिए। तो भीष्म वर्णन करने लगे कि आपका सुंदर रूप, उसका स्मरण मुझे आ रहा है कि जब धूल आपके मस्तक पर लगी हुई थी और आप चक्र हाथ में उठाए मेरी तरफ भाग रहे थे, और भीष्म ने कोई तीर नहीं चलाए, कोई युद्ध नहीं किया, इतना सुंदर लग रहा था उनको ये दृश्य, दोनों हाथ जोड़ दिए, हाथ ऊपर किए मस्तक की ओर और कृष्ण को प्रणाम करने लगे कि आइए और मेरा वध कर दीजिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इस गति की कामना तो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। तो ऐसे भीष्म उनको कष्ट भोगना पड़ा। तो यहां पर उन्होंने सत्यवती माता से कहा कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने दो उदाहरण दिए। उन्होंने बतलाया कि ऐसे पूर्व में हुआ है कि जब स्त्रियां पुत्र को उत्पन्न नहीं कर पाई थी तो फिर ब्राह्मणों से पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन्होंने उदाहरण दिया परशुराम जी का कि जब परशुराम ने सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था तो क्षत्रियों की जो विधवाएं थीं अब वंश को आगे कैसे चलाती, तो उन्होंने उच्च कुलीन ब्राह्मणों से पुत्र उत्पन्न किए और उसके द्वारा फिर क्षत्रिय समाज आगे बढ़ा। तो ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भी हमें ब्राह्मणों से ही ये कार्य कराना चाहिए। तो फिर उस समय सत्यवती को स्मरण आया कि उनके एक पुत्र हैं। दरअसल पिछले युगों में ऐसा संभव था, क्योंकि हम लोग को सुनकर कितना अजीब लग रहा होगा कि अरे उसके भाई की मृत्यु हो गई है और वो कह रही है माताजी की उससे ये कर लीजिए, ये संभव था और इसकी अनुमति भी थी। लेकिन कलयुग में ये चीजें मना हैं। हमें ये उदाहरण सुनकर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कलयुग में भी ये संभव हो सकता है। शास्त्रों में बतलाया गया है कि कलयुग में पांच चीजें वर्जित हैं, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम, ये तीन चीजें, संन्यासम फल पैतृकम देवरे न सुतोत्पत्ति कलो पंचम विवर्जयेत। तो ये पांच चीजें कलयुग में वर्जित हैं। अश्वमेधम, अश्वमेध यज्ञ करना, अर्थात यज्ञ में अश्व की आहुति देना, अश्वमेधम गवालंबम, और फिर यज्ञ में गायों की आहुति देना, ये भी वर्जित है। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम, कलयुग में संन्यास लेना भी वर्जित है, किसी को संन्यास नहीं लेना चाहिए। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम, और पितरों को मांस अर्पण करना ये भी वर्जित है। और फिर पांचवा, देवरेण सुतोत्पत्ति, देवर के द्वारा, अर्थात अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उनके छोटे भाई के द्वारा संतान की उत्पत्ति करना, देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंचम विवर्जयेत। ये पांच चीजें कलयुग में वर्जित हैं, ये नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए उस युग में, उस युग के नियमानुसार वो सही था। हर युग, युग अर्थात ये मौसम के समान होते हैं, अलग अलग सीजन आते हैं ना, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो ये ऋतुओं के समान हैं। हर ऋतु के नियम अलग होते हैं। वर्षा ऋतु में जो बाहर कार्य किए जाते हैं, जैसे खेतों में कार्य करना इत्यादि, वो वर्षा में होते हैं, वो ग्रीष्म ऋतु में नहीं हो सकते। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि अरे वर्षा ऋतु में हुए तो ग्रीष्म ऋतु में भी होने चाहिए, नहीं हो सकते। इसी तरह जो पहले के युग में नियम थे वो उस युग के लिए थे, क्योंकि उस युग के ब्राह्मण या जो लोग ऐसे कार्य करते थे वो इतने आत्मसंयमी होते थे कि वो कामुक होकर ये कार्य नहीं करते थे। लेकिन कलयुग में ये वर्जित है। तो फिर भीष्म ने ऐसा कहा कि आप, सत्यवती ने सोचा कि मुझे व्यास को बुलाना चाहिए, व्यास देव का स्मरण किया और व्यास देव वहां तुरंत आ गए। व्यास देव से प्रार्थना की सत्यवती ने कि इस प्रकार से कोई वंश चलाने वाला नहीं है और भीष्म स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप भी मेरे ही पुत्र हो, आप इसको स्वीकार करो। व्यास देव ने कहा ठीक है, लेकिन अभी अभी मैं तपस्या कर आ रहा हूं और तपस्या करने से मेरा जो शरीर है वो ठीक नहीं है, बहुत तीव्र तेज बदबू आ रही है, सारा गंदा है शरीर, तो ऐसे समय में सुतोत्पत्ति ठीक नहीं है, कुछ समय आप रुक जाइए। लेकिन सत्यवती ने कहा नहीं, मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं देखूं कि ये वंश सही सलामत रहे, वंश चलना चाहिए। दरअसल जब धीरे धीरे युग बढ़ते हैं तो वंश भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं द्वापर युग तक में कई वंश थे, वंशावलियां चल रही थी, लेकिन कलयुग में हम नहीं देखते हैं, कोई वंश नहीं रहे हैं, ये वंश समाप्त हो जाते हैं कलयुग में। विष्णु पुराण में मैत्रेय मुनि इसका वर्णन करते हैं, वो कहते हैं, वो एक भविष्यवाणी करते हैं, वो कहते हैं कि आने वाले समय में जब सारे वंश समाप्त हो जाएंगे और सब तरफ उत्पात मचा होगा कलयुग में, तो फिर एक दिव्य व्यवस्था के द्वारा उस कलयुग में भी स्वर्ण युग आएगा, ऐसी घोषणा मैत्रेय मुनि ने विष्णु पुराण में की है कि कब आएगा, कलयुग में आएगा, इस कली में ही ये स्वर्ण युग आएगा। और स्वर्ण युग कब प्रारंभ होता है, जब भगवान का स्वर्ण अवतार आते हैं, या भगवान स्वर्ण रूप धारण करते हैं, गौर वर्ण धारण करते हैं और गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वो कलयुग में भी स्वर्णिम युग है, जिसकी घोषणा, जिसकी भविष्यवाणी सारे पुराणों में, वेदों में की गई है। एक बहुत महान भक्त हुए थे भगवान के, जो श्री संप्रदाय में आए, जिनका नाम था विष्णु चित्त। ये कलयुग प्रारंभ होने के करीब 46 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी उस समय। आप सोचिए, अभी कलयुग प्रारंभ नहीं हुआ है, उनका जन्म हुआ, वो प्रकट हुए थे 46 वर्ष पहले, तो अभी 30-40 वर्ष बाद कलयुग प्रारंभ होने वाला है। तो उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा कि जब सारी पृथ्वी पर सब लोग शिखा धारण करेंगे और सारी पृथ्वी पर वो घूमेंगे और बाहु तुले अपने हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, तब कलयुग में ही कली का नाश होगा और एक स्वर्ण युग आएगा। ये घोषणा उन्होंने की थी कलयुग आने के पहले। कई बार जो इस्कॉन संस्था में नहीं है, वो लोग जब भक्तों को हाथ ऊपर करके कीर्तन करते देखते हैं, तो कहते हैं कौन सा नया तरीका है भगवान की भक्ति करने का। साधारणतः भगवान की भक्ति की जाती है हाथ जोड़ के, कि बस खड़े हो जाओ, आंख बंद करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के सामने आकर आंख बंद करो और भगवान का स्मरण करो, यही नियम है। तो जब वो लोग देखते हैं कि ये लोग दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से उछल रहे हैं, तो ये तो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन अगर शास्त्र पढ़ें तो सब जगह यही लिखा है, कई जगह ये शब्द आया है, बाहुतुले, दोनों बाहें ऊपर करके। स्वयं कुलशेखर, राजा कुलशेखर मुकुंदमाला स्त्रोत्र में भी इसका वर्णन करते हैं कि दोनों बाहें ऊपर करके कीर्तन करना चाहिए। तो फिर उन्होंने भी यही घोषणा की विष्णु चित्त ने, कि जब ऐसा समय आएगा तो वो स्वर्णिम युग होगा, जहां भगवान के नाम का गुणगान सारी पृथ्वी पर होगा। स्वयं जगन्नाथ जी ने भी ये घोषणा की थी। एक स्थान पर वर्णन है कि जगन्नाथ जी के पास कई संप्रदाय के लोग गए जगन्नाथपुरी में कि क्या होगा, एक कलयुग में बड़ा उत्पात है। तो उन्होंने घोषणा की कि एक ऐसा समय आएगा जब म्लेच्छ, यवन और अन्य लोग, ये लोग शिखा धारण करेंगे और जनेऊ धारण करेंगे, अर्थात म्लेच्छ और यवन भी, और साथ ही साथ वेदों का जो फल है उसको स्वीकार करेंगे या उसको ग्रहण करेंगे, तब उस समय ये कलयुग का नाश होगा और कलयुग में स्वर्ण युग आएगा, भगवान की भक्ति फैलेगी। ये स्वयं जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी में घोषणा की है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। तो देखिए क्यों उन्होंने ऐसा कहा, यवन और म्लेच्छों को शिखा रखना और जनेऊ धारण करना उनके लिए अनुमति नहीं है, वे नहीं कर सकते, और ना ही वे वेदों को पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ना भी उनके लिए मना है। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने कहा कि जब उस समय यवन, म्लेच्छ और अन्य, अर्थात जो भी कोई है इस पृथ्वी पर, जब वो शिखा धारण करेंगे, जनेऊ धारण करेंगे, और साथ ही साथ वेदों को नहीं, वेदों के फल को, और वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम अर्थात वेद और फल पका हुआ, गलितम फलम, उसका फल है श्रीमद् भागवतम। तो जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी ने कहा कि जो लोग मेरे नाम का कीर्तन करेंगे, जो लोग शिखा रखेंगे, धारण करेंगे, चाहे वो यवन हो, म्लेच्छ हो, कोई भी हो, लेकिन वो श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे, तो ऐसे लोग जब सारी पृथ्वी पर विचरण करेंगे तब उस समय एक स्वर्णिम युग आएगा, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो देखिए कितनी सारी भविष्यवाणियां हैं कि ऐसा होगा। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक समय आएगा जब मायापुर में रशिया से, जर्मनी से, यूरोप से भक्त आएंगे और सब हाथ ऊपर करके एक साथ गाएंगे जय सचिनंदन गौर हरि, हाथ ऊपर करके गाएंगे जय सचिनंदन गौर हरि। और हम लोग देख रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर की ये भविष्यवाणी पूर्ण हुई, और वो भविष्यवाणी को पूर्ण किया एक महान सेनापति श्रील प्रभुपाद ने। आज अगर आप में से जो भाग्यवान लोग गौर पूर्णिमा के अवसर पर मायापुर जा सकें तो वो देखेंगे कि अलग अलग देशों से, और ऐसे देशों से जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता। हम जब पिछली बार कुछ साल पहले मायापुर में थे तो उस समय चाइना से भक्त आए थे पहली बार मायापुर। चाइना जहां पर जब प्रचार आरंभ हुआ तो उस समय अगर आपके बैग में एयरपोर्ट पर भगवद गीता देख ली जाती थी तो आपको अरेस्ट कर देते थे, आपको जेल में डाल दिया जाता था, ये स्थिति थी वहां पर। और वहां से 50 भक्त, और वो कोई हिंदू नहीं थे, भारतीय नहीं थे कि जो भारतीय चाइना में रह रहे हैं, सब चाइनीज थे। 50 भक्त वो मायापुर आए थे पहली बार, कुछ साल पहले की बात है। तो देखिए सारी पृथ्वी से, और वो आकर क्या कर रहे थे? महामंत्र का जाप, कीर्तन, नाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन सारे मायापुर में। और मायापुर के भी वासी बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हैं जब बाहर के पाश्चात्य देशों से भक्त आते हैं, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अभी तक उन्हें लगता था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे हैं, केवल बंगाल के हैं। लेकिन अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये सारे जगत को पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु केवल बंगाल के नहीं हैं, केवल भारत के नहीं हैं, सारे जगत के हैं। तो इस तरह सारे जगत में चैतन्य महाप्रभु के नाम को श्रील प्रभुपाद ने फैलाया है, और उनका ये आंदोलन अगले कई हजार वर्षों तक चलता रहे। इस सब के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी सेवा को बड़ी अच्छी तरह से करें, उनके आंदोलन में एक निमित्त बने। ये आंदोलन श्रील प्रभुपाद ने पहले ही पूरा कर दिया है, केवल हमें निमित्त बनना है। जैसे युद्ध के पहले ही भगवान ने सबको मार दिया था, लेकिन अर्जुन निमित्त बने, अर्जुन ने तीर चलाए और वो लोग मर गए, लेकिन पहले ही मर चुके थे। 11वें अध्याय में भगवान ने दिखलाया था। इसी तरह श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन को पूरे जगत में पहले से ही फैला दिया है, हमें केवल निमित्त बनना है, सामने आकर एक्टिंग करना है। और श्रील प्रभुपाद पीछे से बैठ के डायरेक्शन करेंगे, प्रचार होगा हर नगर हर ग्राम में, ये घोषणा चैतन्य महाप्रभु ने की है और ये सत्य है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है श्रील प्रभुपाद के जीवन का कि उन्होंने भी घोषणा की थी कि ये होगा। एक समय श्रील प्रभुपाद भारत में थे, जब वो संघर्ष कर रहे थे पत्रिका छापने के लिए, उनके पास धन नहीं था, पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो एक महिला ने उनसे कहा, दरअसल देखिए क्या क्या प्रभुपाद को सुनना पड़ा, प्रभुपाद को लोगों ने पागल भी कहा। तो एक महिला ने उनसे कहा कि स्वामी जी आपके पास पैसा भी नहीं है पेपर खरीदने के लिए, मेरे पति देते हैं तो आप पैसा लेके उनसे पेपर खरीदते हो। उस समय प्रभुपाद उनके घर पर बैठे थे और प्रभुपाद प्रसाद ले रहे थे और उन्होंने कहा कि आप पैसा भी नहीं है, मेरे पति देते हैं, आप पैसा लेकर पेपर खरीदते हो तो क्यों इतना कर रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद खा रहे थे और हाँ उन्होंने कहा कि अपने इस पागलपन को छोड़ के नहीं देते आप, एक पागलपन है। प्रभुपाद को कहा कि पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं, छोड़ दो इसको। तो प्रभुपाद जो वर्णन कर रहे थे वो बतला रहे थे कि प्रभुपाद उस समय खा रहे थे, ऐसे ही चम्मच उन्होंने छोड़ दिया और एकदम खड़े हो गए और बड़े क्रोध में आ गए प्रभुपाद और उन्होंने उनसे कहा कि आप एक दिन देखोगे मेरी किताबें सारे जगत में हर ग्राम हर नगर में होंगी और कृष्ण का नाम हर नगर हर ग्राम में लिया जाएगा और ये होगा। और उन्होंने कहा, इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद उस समय बात कर रहे थे, उन्होंने कहा एंड यू विल सी बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, ऐसा उन्होंने कहा। तो घबरा गई, ठीक है हो गया, बात खत्म हो गई। कुछ साल बीत गए, उनके पति की भी मृत्यु हो गई, श्रील प्रभुपाद भी इस जगत को छोड़कर चले गए और कई सालों बाद एक दिन उनके घर पर घंटी बजी। उन्होंने दरवाजा खोला, एक भक्त खड़े थे और वो कह रहे थे ये किताब ले लीजिए, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, श्रील प्रभुपाद की किताब। आप लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद की किताब है जन्म मृत्यु के परे। तो जैसे ही उन्होंने देखा वो घबरा गई एकदम और तुरंत उस भक्त को ऊपर बुलाया, घर पे बुलाया, तुम्हारे स्वामी जी तुम्हारे गुरु यहां बैठे थे, यहां यहां बैठकर वो खा रहे थे जब उन्होंने मुझे बोला बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। तो श्रील प्रभुपाद ने भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी कि ये होगा। तो ये होने वाला है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता। केवल हमारे लिए यही अच्छा है कि हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में उनकी सेवा करते हुए अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं, श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगाएं, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। अन्यथा जैसे नरोत्तम दास ठाकुर याचना करते हैं भगवान से कि जीवन भर अपराध और जीवन के अंत तक भी अपराध करते रहेंगे, कष्ट सहते रहेंगे और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु, तो इसीलिए इन सब से परे जाना चाहिए। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के परे। श्रील प्रभुपाद ने बड़ा सरल मार्ग दिया है, हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए बड़ी आसानी से इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकते हैं। ये लगता है बड़ा सरल, ऐसा सुनने में होता है कि कैसे इतनी सरलता से हम जा सकते हैं। अरे जन्म मृत्यु का चक्र पार करने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी अपने आप को झोंक देते हैं शास्त्रों में, लेकिन फिर भी पार नहीं हो पाते। फिर कैसे आप मुक्त होंगे? केवल हरे कृष्ण का नाम लेकर। लेकिन ये शास्त्र की वाणी है और श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों का निर्देश है जिसको भगवान स्वीकार करते हैं। और इसीलिए अगर केवल हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण श्रद्धा से हम ग्रहण करते हैं तो ये निश्चित है कि हम इसी जन्म में भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, भगवान की नित्य सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं। तो इस तरह से व्यासदेव ने तीनों रानियों, सॉरी दो रानियां थी उस समय, अंबा अंबिका और अंबालिका, तो दोनों से पुत्र उत्पन्न किए। लेकिन क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उन्होंने मना किया था सत्यपति को लेकिन वो मानी नहीं, तो पहले के पास जाने से उन्होंने कहा, जब वो बाहर आए सत्यवती ने पूछा, बहुत उत्सुक थी, तो उन्होंने कहा इसका जो पुत्र होगा बहुत शक्तिशाली होगा, 10,000 हाथियों का बल होगा, बड़ा गुणवान होगा, बड़ा ज्ञान होगा, लेकिन इसकी माता की गलती के कारण वो अंधा होगा। तो सत्यवती को स्वीकार नहीं हुआ कि एक अंधा कैसे राजा बनेगा, तो सत्यवती ने कहा कि अब आप फिर से एक पुत्र उत्पन्न कीजिए दूसरी रानी के साथ। दूसरी रानी से भी पुत्र उत्पन्न किया। उन्होंने कहा कि ये पुत्र बड़ा प्रतापी होगा, लेकिन रानी की गलती के कारण बीमार रहेगा और जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर से दुख हुआ सत्यवती को। सत्यवती ने कहा कि फिर से एक बार पुत्र उत्पन्न करने का प्रयास कीजिए। तो इस बार जो अम्बालिका थी वो चाहती नहीं थी, क्योंकि उनका जो वेशभूषा अभी जंगल से आए तपस्या किए हुए को स्वीकार नहीं था, तो उन्होंने अपनी दासी को आगे कर दिया और दासी ने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। और फिर जब सत्यवती ने पूछा तो उन्होंने बतलाया कि इससे जो पुत्र होगा वो स्वयं धर्मराज का अंश होगा, ये स्वयं धर्मराज ही होंगे। दरअसल विदुर ये धर्मराज हैं, उनको भी श्राप मिला था। उसकी कथा आती है मांडव्य मुनि की कथा, कि मांडव्य मुनि एक समय अपने आश्रम में बैठे तपस्या कर रहे थे और उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था कि बोलेंगे नहीं। और ऐसे समय में जब वो तपस्या में लीन थे तो कुछ चोर आए, चोरी कर राजा के सैनिक उनके पीछे भाग रहे थे, तो मांडव्य मुनि के आश्रम में घुस गए और उन चोरों ने अपनी जो चोरी का सामान था वहां छुपा दिया। तो उस समय मांडव्य मुनि ने कुछ देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सैनिक आए और उन्होंने जब ढूंढना शुरू किया तो उन्हें लगा कि ये जो ऋषि है, ये जो मुनि यहाँ बैठा हुआ, ये भी चोर है। तो उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मौन व्रत धारण किया था, कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने ले जाकर सबको मारने के लिए सबको राजा के पास ले गए। राजा ने कहा सबको मार डालो, चोर लोग हैं, चोरों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर एक शूल हरेक के शरीर में घुसाया गया, लेकिन जब मांडव्य मुनि के शरीर में घुसाया गया और कई समय काफी समय तक रहा तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो सब घबरा गए, कह रहे ये तो लगता है कि कोई बहुत बड़े ऋषि हैं, अरे किसी के शरीर में पूरा वो शूल डाल दीजिए और वो मरे नहीं कई दिनों तक। तो तुरंत राजा को बुलाया गया, राजा ने बड़ी क्षमा याचना की। तो मांडव्य मुनि मान गए कि ठीक है, आपकी गलती नहीं है, वापस गए। कुछ समय बाद यमराज के पास गए, उन्होंने यमराज से पूछा कि मुझे ऐसा दंड क्यों मिला। तो यमराज ने कहा कि आपने एक समय एक छोटे से कीड़े के अंदर एक तेज घास का तिनका ऐसे घुसा दिया था, कीड़े की भी मृत्यु नहीं हुई थी लेकिन उसको कष्ट हुआ था, इसीलिए आपको कष्ट हुआ। मांडव्य मुनि ने कहा कि अच्छा मेरी उम्र क्या थी उस समय, आप छोटे बालक थे। तो मांडव्य मुनि को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि अरे छोटे बालक का कोई अपराध माना जाता है? बचपन में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, तो कैसे आपने अपराध का सजा दे दी? आप ब्राह्मण हत्या को सबसे बड़ा पाप मानते हो, आपके जो लेखा जोखा है उसमें लिखा है। तो फिर मेरी हत्या करना आपको मंजूर था, लेकिन एक बचपन में की हुई गलती का आप मुझे पाप का फल दे रहे हो, तो इसीलिए आपको मैं श्राप देता हूं, आप जाकर शूद्र बन जाओ पृथ्वी पर, शूद्रों का कार्य आपने किया है, जाकर मनुष्य जन्म ले लो, शापित, फिर से शाप दे दिया। और फिर उन्होंने कहा कि आज से मैं घोषणा करता हूं कि बचपन में कोई अगर पाप करेगा तो उसका अपराध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी आप सब लोग खुश रहे, बचपन में जितने सारे अपराध किए सब क्षमा हो गए। तो इसी कारण से यमराज को विदुर का जन्म लेना पड़ा, लेकिन ये बाहरी कारण है। दरअसल हर कोई भगवान की लीला में भाग लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम लोग आए किसी न किसी तरह और भगवान की लीला में भाग लें। तो इसी तरह विदुर का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र का जन्म हुआ जो अंधे थे, और फिर पांडु का जन्म हुआ। और इनके जन्म के बाद फिर आगे चलकर इनके पुत्र हुए, और फिर आगे की असली महाभारत प्रारंभ हुई, द्वेष इत्यादि, और फिर आगे चलकर युद्ध। तो अगली बार हम लोग धृतराष्ट्र के विवाह, पांडु के विवाह और विदुर के विवाह के विषय में, और उनके परिवार, उनके संतानों के उत्पत्ति इत्यादि आगे हम लोग अगली बार सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी के कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी है, कुछ पूछना चाहते हैं?